گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا, نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی, تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت بھی کیجئے, اللہ تعالی کی حمد بھی کیجئے, اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک بھی پڑھے, تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, جی چلائیے.
سوال یہ ہے کہ نابالغ بچے جو اگلی صفوں میں صفوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے, ان کو پیچھے کر دیا جائے یا وہیں کھڑے رہنے دیا جائے, اس کے نماز کے حوالے سے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. نابالغ بچے, ان کی صفوں کا حکم یہ ہے کہ مردوں کی صفیں مکمل ہونے کے بعد پھر ان کی صفیں بنائی جائیں گی.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ ہے کہ بس اوقات چھوٹے بچے وہ اگلی صفوں میں آ جاتے ہیں, تو نابالغ کا لفظ یہ عام ہے, جو بالغ نہیں اس کو نابالغ کہا جاتا ہے. اب نابالغ دو طرح کے ہوتے ہیں, بعض تو وہ بالکل 3-4-5 سال کے بچے کہ جن کو نماز کا نماز ہونا نہیں پتا, وہ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے ہوتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے بچے بھی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں. تو وہ بچہ کہ جو بالکل ہی نماز کو نماز نہیں سمجھتا, جس کو ہم یہ کہتے ہیں غیر عاقل, نا سمجھ بچہ, تو نا سمجھ بچے کو اگر صف میں کھڑا کریں گے تو اس کا کھڑا ہونا, وہ گویا دو نمازیوں کے درمیان اس کا کھڑا ہونا, وہ ایک فصل اور گیپ فاصلہ پیدا کر رہا ہوتا ہے. اور نمازی کے حکم یہ ہے کہ صف میں ہر آدمی کے کندھے دوسرے کے کندھے سے مس ہوں, ملے ہوئے ہوں, یہ واجب ہے جماعت کے واجبات میں سے. تو اب اگر ایسا نہ سمجھ بچہ ہے جو بالکل نماز کو نماز بھی نہیں سمجھتا, کھیل کود کر رہا ہے, تو ایسے بچے کا کھڑا ہونا نہ ہونا, نماز پڑھنا نہ پڑھنا, وہ برابر ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی وہ نماز اس کی نہیں ہوتی,
وہ ہے ہی نہیں.
اب اس کا گویا ہونا نہ ہونا برابر ہے, لیکن اس کی وجہ سے فاصلہ آ رہا ہے, تو یہ غلط طریقہ ہے. اس کی وجہ سے صف منقطع ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, بعض نابالغ ڈسکنیکٹ ہے, تو ایسی صورت میں گناہگار بھی ہوں گے جو اپنے بچوں کو اس طرح کھڑا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے صف منقطع ہو رہی ہو. حدیث شریف میں صفوں کو ملانے کا حکم ہے, اور اس طرح صف باندھنے کا حکم ہے جیسے سیسا پلائی دیوار مضبوط ہوتی ہے, اس طرح ذرہ برابر بھی گیپ نہ آئے.
ٹھیک ہے.
اچھا, دوسرے بچے وہ ہوتے ہیں جو ہیں تو نابالغ لیکن سمجھدار ہیں, جیسے 7-8-9 سال کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں, نماز کو نماز سمجھتے ہیں اور باقاعدہ اچھے انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر ایسا بچہ دوران صف کھڑا ہو رہا ہے تو پیار محبت سے پیچھے کر دیا جائے. اب نماز اگر وہ شروع کر چکا ہے تو اب نماز شروع کر لینے کی صورت میں اب اس کو پیچھے نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے,
تو سمجھدار بچہ نماز شروع کر چکا ہو تو اس کو پیچھے نہیں کریں گے. وہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ اس کو پیچھے پیار محبت سے بھیج دیں, شروع کرنے کے بعد آپ اس کی نماز میں خلل نہ لائیں. اور اب ایسا ہے کہ ایک ہی نابالغ بچہ ہے لیکن وہ سمجھدار ہے, نماز کو نماز سمجھتا ہے, جیسے عام طور پہ تراویح کے اندر جو سامعین ہوتے ہیں, एक तादाद सुनने वालों की वो भी होती है जो बालिग नहीं होते, करीब करीब बुलूगत के मुराहिक होते हैं, तो वो जिस तरह हाफिज साहब का कुरान सुनते हैं सफे अव्वल में खड़े होते हैं, तो उनका खड़ा होना एक आध बच्चे का, यानी एक बच्चा है तो वो समझदार वो सफ में खड़ा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नाबालिग बच्चे सफ में खड़े ही नहीं हो सकते, तो इसके ये कुछ अहकाम आते हैं कि बिल्कुल ना समझ बच्चा, ठीक है, वो सफ में उसको खड़ा नहीं कर सकते। अगर वो हो चुका नमाज शुरू कर चुका तो ऐसे बच्चे की नमाज नमाज नहीं होती, उसको पीछे किया जाएगा। वो समझदार उम्र का नाबालिग बच्चा है जैसे 7-8 साल की उम्र या इससे ज्यादा, तो अब ऐसे बच्चे को पीछे नमाज शुरू करने से पहले कर दें, दौराने नमाज जब वो शुरू नमाज कर चुका तो अब उसको पीछे नहीं करेंगे। और एक ही बच्चा है और है समझदार नाबालिग है और नमाज को नमाज समझता है, तो वो अगर अगले सफ में भी खड़ा हो जाता है तो नमाज पे कोई असर नहीं पड़ता।
ठीक है, तो हुजूर आमतौर पर जुम्मतुल मुबारक की जो नमाज है उसमें बच्चों के मामला ज्यादा होते हैं
जी,
नॉर्मली तो अब्बा जान नहीं आते तो बच्चे तो बहुत कम है, यानी नमाज ही कम होते हैं मस्जिद के अंदर उस दिन जो है, वो लोग ले आते हैं मस्जिदों के अंदर अपने बच्चों को। अच्छा, नीयत अच्छी होती है कि ये अभी से साथ जाएगा, इसको पता चलेगा कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज होती है, तरगीब मिलेगी, एक मुसलमानों का जो दिन है खुसूसी जिसको मनाया जाता है उसके अंदर ये शामिल होगा। लेकिन जो अहकाम आप बयान फरमा रहे हैं तो ये तो तकरीबन हर मस्जिद में ही मफकूर नजर आते हैं। हम भी इमाम साहब जुम्मा पढ़ते हैं तो इमाम साहब का ऐलान सुनते हैं कि नाबालिग बच्चों को पीछे ले जाएं, उनके सब आखिर में बनाएं, सारी बातें होती हैं, लेकिन अवामुन नास जो है वो इस बात पर राजी नहीं है। तो एक वजह ये भी है कि बच्चा कैसे अकेला पीछे छोड़ दे, पीछे से कोई उठा के ले जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा आ जाए या ये पीछे जाके शरारतें करेगा, तो उनको क्या मदनी फूल देते हैं? क्या वो बच्चे लेकर आए, नीयत तो अच्छी है, सिखाने की नीयत है, पर अगर लेकर आए हैं तो क्या अब इस खदशे के पेशे नजर के पीछे करने की सूरत में बच्चा आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई मामला हो सकता है, तो क्या अब खड़ा कर सकते हैं? अच्छा, दूसरा ये भी इरशाद फरमाइए कि चले उसने खड़ा कर दिया है, अब हम मसला बयान फरमा रहे हैं लेकिन सुनने वाला वो मौजूद नहीं है, और इस जुम्मतुल मुबारक में बच्चा ले आता है और इमाम साहब भी ऐलान कर रहे हैं कि बच्चों की सफ अलग बनाए लेकिन वो नहीं बनाता, तो क्या अब जो नमाजी आगे बढ़ेगा वो बच्चे के साथ खड़ा हो जाए या जबरदस्ती करे, उसके लिए क्या हुक्म है? क्या वो गुनाहगार तो नहीं होगा?
अब देखिए, शरीय अहकामात ये हर एक मुसलमान को सीखना चाहिए। अब जब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं तो ये सारे अहकामात भी मालूम होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल ही मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, बच्चों को मस्जिद में लाएं, लेकिन ना समझ बच्चों को मस्जिद में लाने से मना किया गया है।
अच्छा,
तो ना समझ बच्चों को ना लाएं कि जो खेल कूद उछल कूद करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, नमाज को नमाज नहीं, शोर ही मचाते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को जब तक वो समझदार उम्र तक ना हो जाएं उनको ना लाएं।
ठीक है,
जो समझदार उम्र तक बच्चे हैं उनको लाया जा सकता है, और जो यकीनन समझदार होंगे तो उन बच्चों के गुम होने का भी अंदेशा नहीं होता। बच्चे वालिद के बगैर स्कूल भी तो जाते हैं ना, तो स्कूलों में कौन से वालिद अपने साथ रखते हैं? वालिद साहब स्कूल छोड़ते हुए काम पे चले जाते हैं, बच्चों को वैन लेने आती है, वैन लेकर जाती है, सारे मामला होते हैं। लेकिन वो खदशा जो आपने जिक्र किया वो नमाज जुमा में ही क्यों?
ठीक है,
तो अगर बच्चे अव्वलन तो ये कि ना समझ बच्चा है तो उसको लाना ही मना है मसाजिद।
ठीक है,
ठीक है, वो शोर होगा और मस्जिद में शोर गुल की इजाजत नहीं है।
ठीक है,
समझदार बच्चा है तो यकीनन आप समझा के लाएंगे कि आपने एक जगह बैठना है, पिछली सफ में बैठना है और भागना नहीं है, तो समझदार बच्चा होगा, यकीनन आपकी बात को फॉलो करेगा। रहा मामला नमाज सिखाना, तो देखें बच्चे को नमाज सिर्फ जुमे के दिन ही अपने साथ खड़े करके आप पढ़ाएंगे तो बच्चा उसमें क्या सीखेगा? पांचों वक्त की नमाज पढ़ें, नवाफिल वगैरह का एहतमाम करें, वो घर पे आके अदा करें, सुन्नत गैर मौकदा घर में पढ़ के फिर मस्जिद में आए, तो अपने साथ आप समझदार बच्चे को लाना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने साथ उसको तरबियत दें, लेकिन घर के अंदर नमाज नवाफिल सुन्नतें अदा करके भी बच्चों को तरबियत दी जा सकती है। तो जरूरी नहीं है कि पूरे हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन बच्चे को नमाज की तरबियत, कहीं ये ना हो कि बच्चा ये तरबियत हासिल कर रहा हो कि हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन नमाज पढ़ी जाती है क्योंकि अब्बू मुझे सिर्फ जुमे के दिन ही लाते,
अब्बू ही जुमे वाले दिन आते हैं।
तो तरबियत नमाज की पूरे हफ्ते में समझ लें कि 7×35 नमाज सिर्फ जुमे की पढ़वाने आते हैं, बाकी 34 नमाजें उसमें बच्चा क्या नहीं उसमें आप नहीं सिखाएंगे। तो ये जज्बा जुम्मे में ही जब उभर रहा है तो पूरी बकिया नमाजों में भी होना चाहिए, और बच्चे को नमाज सिर्फ जुमे में जमात के दौरान कैसे सीखने को मिलेगी, जब आप बच्चे को बकायदा खड़े होकर सिखाएं कि ये जो हम हाथ बांध के खड़े होते हैं क़याम होता है,
ठीक है,
फिर हम रुकू करते हैं, फिर हम खड़े होते हैं इसको कोमा कहते हैं, फिर सजदे में जाते हैं, फिर बैठते हैं जिसे जलसा कहते हैं, फिर एक और सजदा करते हैं, तो यूँ खड़े होना, रुकू करना, कोमा, जलसा, दो सजदे, ये एक रकत होती है, फिर हम खड़े हो जाते हैं। नमाज सिखाने का तरीका ये घर में भी सिखाई जा सकती है, तो ये उजर के हमारे साथ खड़ा होगा तो नमाज सही सीखेगा, ये फार्मूला किसी हद तक समझ से बालातर है।
लेकिन दूसरा जो मैंने अर्ज किया कि चले ये तो फिर भी ले आया ना, हमारा मसला नहीं सुना और वो ले आया, दूसरे नमाजी के लिए क्या हुक्म है?
देखा दूसरा नमाजी
को खींच के पीछे कर दे,
अब ये है मामला कि अगर कोई बच्चे को खड़ा कर देता है,
ठीक है,
उस वालिद है उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं बच्चे को पीछे कैसे करूं। अब एक शरी हुक्म हमने बयान कर दिया कि बच्चों के सब पीछे बनते, आप पीछे ले जाए, अब वो जिद पे अड़ा है कि नहीं यहीं पे खड़ा होगा, तो गोया आपने एक नेकी की दावत दी,
ठीक है,
वो नहीं मान रहा। एक बुराई है कि बच्चा है ना समझ, जो बिल्कुल नमाज, जिसकी नमाज नमाज ही नहीं है, छोटा बच्चा 3-4-5 साल का, तो अब ऐसे बच्चे को वो पीछे भी नहीं कर रहा, तो एक आपने नेकी की दावत दी या उसके इस बुराई के अमल से उसको रोकना चाहा, वो नहीं मान रहा, आप पर जितना वाजिब था वो आपने अदा कर दिया, अब लड़ने झगड़ने और सबके सामने उसको जलील करने की हाजत नहीं है, कि बजाय इसके कि वो इस्लाह कबूल करे वो मुतनफिर होगा, पूरी नमाज में वो डिस्टर्ब हो रहा होगा,
ठीक है,
और हो सकता है दुश्मनी पैदा कर ले
बच्चे के दिल में,
बच्चे के दिल में भी हो सकती है,
यानी यूँ समझ ले कि मेरे साथ हो चुका है बचपन में, तो मुझे आज तक वो याद है, और शायद मुझे ये याद है कि मैं उस वक्त समझदार बच्चों में शुमार होता हूँ और नमाज की समझ थी, लेकिन जो भी थे बुजुर्ग थे उन्होंने डांट कर जो है वो पीछे किया, तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है,
ये देखें अभी अलग
वो आज तक दिल में है कि वो ठीक नहीं हुआ था, और जब तक मैं मस्जिद में जाता रहा तो वो जो भी थे बुजुर्ग अच्छे नहीं लगते थे कि इन्होंने मुझे डांटा था और पीछे किया था,
प्यार मोहब्बत नरमी नरमी से
और डांट भी रहते हैं बड़े अंदाज, हर जुम्मे ही ये मनाजिर अगर आप देखें खास तौर पर मस्जिद की वो मनाजिल के जहाँ बाद में लोग पहुँचते हैं, पहली मंजिल में तो चले नमाजी आ जाते हैं, जहाँ बच्चे भी उमूमन पहले इंजॉय करने चले जाते हैं खेल कूद में लगे रहते हैं, तो वहाँ ये मामूलात लोगों की तरफ से भी नजर आते हैं।
देखें है दोनों तरफ से, बाद हमारे जो उम्र रसीदा नमाजी हैं वो इस मामले में थोड़ा बहुत ज्यादा ओवर होकर डांट डपट का सिलसिला करते हैं, जैसे कि आपकी याददाश्त में वो वाकया रह गया, तो अगर वो प्यार मोहब्बत से आपको नरमी से कहते कि बेटा बच्चे जो होते हैं ना वो पीछे खड़े होते हैं, आप पीछे खड़े हो जाओ, ये मर्दों की जगह है, यहाँ पे मर्द खड़े होंगे, जब आप भी बड़े हो जाओगे फिर आप भी आगे खड़े हो जाना,
वालिदैन अपने बच्चे को
समझाएं, बुजुर्ग हमारे अफराद को भी चाहिए, फिर माँ बाप को भी चाहिए कि ये भी अगर कोई इस्लाह कर रहा हो तो उस इस्लाह को कबूल करें, अगर कोई ये मसला बयान कर रहा है कि बच्चों के सब पीछे बनाए तो बजाय इसके के कीलो काल करें हुज्जत बाजियां करें, वो हुक्म शरा बयान कर रहा है, अब इस हुक्म शरा पे अमल करने की कोशिश करें, अब किस अंदाज में कोशिश कर सकते हैं, किस अंदाज में अमल हो सकता है, इसकी सूरत अपनाएं, लड़ें झगड़ेंगे तो मसला यकीनन बाप भी गलती कर रहा होगा, अगर वो भी उलझ रहा होगा, एक हुक्म शरा बयान किया है उसमें अमल करें, दिलो जान से कबूल करें, और जब बच्चे की नमाज की तरबियत करनी है तो तरबियत के बहुत सारे जराए हैं उनको अख्तियार कर,
ठीक है, मसला चला है तो आखिर में एक और चीज के इसमें यूं भी अमल किया जाता है, हिला निकालने की कोशिश के कोने पे खड़े हो जाते हैं, ये लास्ट बच्चा है और सेकंड लास्ट उसके वाले साहब खड़े हैं, तो यूं भी समझते हैं कि हमने बच्चे को कोने पे कर दिया। अच्छा इसमें ये भी बताइए कि बार दफा मसाजिद के कोने ऐसे भी बरामद हो जाते हैं सफों के आखिर में कि वहाँ बड़ा नमाजी नहीं खड़ा हो सकता, तो क्या अब खड़ा कर सकते हो पहली वाली सूरत में? क्या
असल जो है वो जो सफ है जहाँ मर्दों को खड़ा होना है बड़े उम्र रसीदा बालिग अफराद को, तो वहाँ अगर जगह बनती है तो उस जगह को पूर्ण करना होगा बालिग शख्स ने, बालिग नमाजी ने, अब अगर वो जगह ही बिल्कुल 6 इंच की जगह है, 6 इंच में बच्चा ही आ सकता है छोटा, वही अपने रुकू सुजूद कर लेगा, तो बड़े को ऐसे मौके पे तो फंसना ही नहीं चाहिए,
ठीक है,
तो जहाँ बच्चे की गुंजाइश है तो अगर बच्चा खड़ा हो गया तो वो किसी का हक नहीं जाया हो रहा, तो ऐसी सूरत में हरज नहीं होगा,
ठीक है, जज़ाकअल्लाह, उम्मीद है कि इस मसले पर काफी रहनुमाई मिल चुकी है, और जो वालिदैन है खासतौर पर बच्चों को लेकर जाते हैं और अच्छी ही नीयत होती होगी, लेकिन जो हुक्म शरीयत है उस पर भी अमल करने की نیت فرما لیں, کوشش بھی کریں اور اسی پر عمل کریں, اور دیگر جو اس میں مبتلا ہیں ان کو بھی بڑے اچھے انداز سے پیار سے سمجھائیں. مفتی نوید رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حیدرآباد دارو افتاء اہل سنت سے اس وقت لائیو ہیں, انشاءاللہ ہم سے بھی ہم سوال کرتے ہیں. جی پہلی کال چلائیے.
محمد ابن تاریخ سے باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں, یہ جو حرمین شریف میں سیلفی لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟
یہ حرمین شریفین میں سیلفی,
سب سے پہلے یہ بات یاد رکھی جائے کہ حرمین میں جو بھی حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. تو اب جو سیلفی لینے والا ہے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے, اس کی عبادت کر رہا ہے؟ تو در حقیقت نہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے نہ ہی اس کو راضی کر رہا ہے, بلکہ اپنے نفس کو خوش کر رہا ہے, یا پھر وہ ریاکاری کا شکار ہو رہا ہے کہ سیلفی بنائے گا, سیلفی بنانے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرے گا اور یہ دکھانا چاہے گا کہ دیکھیں ماں بدولت جو ہیں وہ حرمین میں موجود ہیں اور حج کر رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں. تو یہ باطنی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور ظاہری اعتبار سے بھی یہ ادب کے خلاف ہے. تو ایسی جگہ, ایسی جو متبرک جگہ ہیں اور عبادت کی جگہ ہیں تو وہاں پر خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے, گریا اور زاری کی جائے, اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے, اور سیلفی وغیرہ اور اس طرح کے دیگر کاموں سے پرہیز کیا جائے.
ٹھیک ہے, اور ابھی غالباً ویسے بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی کا ہی سنا جائے. وہ کچھ میسیجز بھی ہیں, ایک پہلا میسیج جو ہمیں موصول ہوا نوید رضا صاحب سے سوال ہے کہ کیا کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہو تو اس کا بدلہ لینا جائز ہے, یعنی خود ہی ہم اس کا بدلہ لے سکتے ہیں یا کوئی کیس اس کا دائر کرنا ہوگا؟
شرعی طور پر تو یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو جتنا اس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں. اور معاف کر دینا یہ افضل ہے, کیونکہ عمومی طور پہ بدلہ لینے میں برابری نہیں ہو پاتی, کیونکہ جس نے آپ کو جتنا نقصان پہنچایا ہے آپ اس کو اتنا نقصان پہنچا کر بدلہ لے سکتے ہیں. اگر آپ اسے بدلہ لینے گئے اور بدلہ لینے میں زیادتی کر بیٹھے کہ جتنا بدلہ لینا تو اس سے زیادہ بدلہ لے لیا, تو ایسی صورت میں اب آپ ظالم بن جائیں گے اور وہ دوسرا آدمی مظلوم بن جائے گا. تو اولا تو یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے, اور اگر معاف نہیں کرنا چاہ رہے تو بدلہ لینے کا اختیار ہے اتنا ہی جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے, جتنی آپ کو ایزا دی گئی ہے. پھر یہ تو ایک جہت ہے. دوسری جہت ہے, بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قانونی معاملات کہلاتے ہیں, کہ مثال کے طور پہ آپ کی کسی نے چیز چوری کر لی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے, کہ آپ کے پاس شرعی گواہ موجود ہیں یا آپ نے اسے چوری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب اگر آپ اسے چیز لینے کے لیے جاتے ہیں تو الٹا آپ کو چور قرار دے دیا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو حکومتی اداروں کی مدد لینی پڑے گی کہ آپ اس کے خلاف کیس دائر کریں, رپورٹ درج کروائیں, ایف آئی آر کٹوائیں تاکہ آپ اپنی چیز اسے حاصل کر سکیں. ورنہ اگر ویسے حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو لوگ آپ کو ظالم سمجھیں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف کوئی کیس کر دے اور آپ مزید پریشانی کا شکار ہو جائیں. ورنہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو شرعی طور پر آپ اپنی چیز لینے کے حقدار ہیں, اس سے لے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے گا.
کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ابرش رکھا ہے, الف سے الف بے رے شیما کو, تو اس میں میری ذہن بھائی فرما دیں کہ اس کے معنی کیا ہے؟ جزاک اللہ.
ابرش نام بتا رہے ہیں بارے میں.
ابرش بتا رہے ہیں نام.
ابرش
اصل جو عربی تلفظ ہے وہ ابرش نہیں بلکہ ابرش ہے.
ٹھیک.
اور ابرش کا معنی ہے سفید اور سرخ نشان والا, تو جس کے چہرے پہ سفید یا سرخ نشان ہو اس کو کہا جاتا ہے ابرش, اور اس کی جو مؤنث ہے وہ برشا ہے. تو اب یہ شاید ابرش نام انہوں نے کسی کا دیکھا ہوگا, اور زمانہ جاہلیت میں بھی ایک شخص گزرا ہے کہ جس کے چہرے پر برف کے داغ تھے, اس کا نام حزیمہ بن مالک تھا, اس کا نام بھی ابرش تھا. تو ابرش جو ہے یہ مذکر ہے اور اس کی جو مؤنث ہے وہ برشا ہے. اور دوسرا پھر اگر اس معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے, کسی کا نام پڑ جانا, جیسا بعض اوقات کسی کوئی کانا ہوتا ہے اس کا کانا نام پڑ جاتا ہے, لنگڑے کا نام لنگڑا پڑ جاتا ہے. تو اب کسی کے چہرے پر داغ ہیں تو داغ ہونے کی وجہ سے اس کا نام ابرش پڑ گیا, तो ये दाग होने की वजह से उसका नाम अबरश पड़ा है, लेकिन उसका नाम अबरश नहीं है, तो अबरश होने के एतबार से रखना मुनासिब नहीं है। लेकिन आजकल नाम जो तलाश किए जाते हैं तो किसी मुस्तनद लुगत में देखने की बजाय अमूमी तौर पर वेबसाइट वगैरह से रुजू कर लिया जाता है जो कि मुस्तनद नहीं होती, तो उनमें मुख्तलिफ नाम होते हैं, उनके नाम भी मुख्तलिफ होते हैं और एडिशन करने वाले भी बाज़ोकात अपने तौर पर एडिशन कर देते हैं। तो इसका अगर किसी वेबसाइट पे नाम देखा जाएगा अबरिश तो मिल जाएगा आपको, और इसका माना लिखा होगा अल्लाह तबारक व ताला की रहमत, ये अबरिश है, नाम मुअन्नस मुअन्नस है, अरबी है और इसका माना है अल्लाह तबारक व ताला की रहमत। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की रहमत इसका ये माना है और तलफ्फुज अबरिश है, इसकी कोई अरबी लुगत से तस्दीक नहीं हो पाई। तो इस एतबार से ये अबरिश नाम ना रखा जाए तो बेहतर है।
ठीक है ठीक है, जज़ाकअल्लाह। तो हुज़ूर मैसेज में सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या छोटे बच्चों को मासूम कह सकते हैं? लोग कहते हैं कि मासूम है, ये लफ्ज बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकता है?
छोटे बच्चों के लिए मासूम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो छोटे बच्चों के लिए मासूम इस्तेमाल किया जाता है तो वो उन माना में इस्तेमाल नहीं किया जाता जो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छोटे बच्चों को जो मासूम कहा जाता है वो इस एतबार से कहा जाता है कि ये गैर जरर रसा होते हैं और उनसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता, और इन पर शक्कत की जाती है, तो शक्कत के एतबार से, गैर जरर रसा होने के एतबार से इनको मासूम कहा जाता है।
जी, एक और कॉल चलाइए।
बच्ची का हकमहर जो होता है बनाना, अभी इस वक्त कितना होना चाहिए?
हकमहर की जो शरई मिकदार है कम अज कम, तो कम अज कम मिकदार है 10 दिरहम, यानी 2 तोले 7.5 माशे चांदी, तो ये कम अज कम मिकदार है, और इससे ज्यादा बाहमी रजामंदी के साथ जितना चाहे रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो भी महर है 2 तोले 7.5 माशे चांदी से कम ना हो।
ठीक है, उसके वजन की जो कीमत बनती है उसके मुताबिक हो। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या जिम जाना और बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग करते हैं जिम जाते हैं, ये जायज है या इसमें कोई हुक्म शरीयत है?
हाँ, बॉडी बिल्डिंग करना बिला शको शुबा मुबाह है और जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बॉडी बनाने में भी कोई हर्ज नहीं है, और मोमिन जो है अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक पसंदीदा भी वो है कि जो चुस्त है और तवाना है, बीमार और हद से ज्यादा मोटा अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक पसंदीदा नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग करने में कोई हर्ज नहीं है, हर्ज जो है वो इसके दीगर लवाजिमात में है कि अक्सर जो बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले होते हैं तो उसमें मुकम्मल तौर पर सितर गोया के खोल दिया जाता है, एक छोटी सी चड्डी पहन ली जाती है और उस दाने भी नजर आ रही होती है, जेरे नाप वाला हिस्सा भी नजर आ रहा होता है, तो किसी भी मर्द का अपना ये हिस्सा खोल देना शरअन हराम है और गुना है। तो इस हिस्से को छुपाकर अगर बॉडी बिल्डिंग की जाती है या बॉडी दिखाई जाती है तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो दूसरा ये कि बॉडी दिखाने की नीयत क्या है, अगर बॉडी दिखाने की नीयत लोगों को डराना है तो अपनी इस नीयत की वजह से गुनाहगार हो जाएगा, और अगर नीयत तरगीब दिलाना है कि लोग इसकी तरफ रागिब हों और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, तमाना रखें, अच्छी अच्छी नीयतें कर ले, तो उम्मीद है कि अजर व सवाब भी मिल जाएगा।
ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा।
इस्लामी भाई ने रोजे की नियत की है रखने की और मन्नत मांगी है कि मेरा बच्चा ठीक है तो मैं रोजे रखूंगी, और क्या ये रोजे उसके शोहर रख सकता है?
जी हजूर,
लेकिन जिसने भी मन्नत मानी है तो मन्नत पूरी करना उसी पर लाजिम होगा, तो अब इन्होंने जिस भी मकसद के तहत रोजा रखने की मन्नत मानी थी वो काम इनका हो गया, तो ये खातून ही रोजा रखेंगी, इन खातून के बदले इनके शोहर रोजा नहीं रखेंगे।
जी, एक और कॉल चला दीजिए।
मैं यू फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, हमारा सवाल ये है, उम्रे पे जा रहे हैं, वहाँ जाकर सुनते अदा करनी है कि छोड़नी है? जी
जी हजरत, उम्रे पे जा रहे हैं, बताइए क्या करें?
नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत उम्रा, उसकी अदायगी के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर हुजूर ही की सुन्नतें छोड़ेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये अलग बात है कि जो मुसाफिर शरी होता है सुन्नत मुअक्कदा अगर वो अदा नहीं भी करे तो उस पर वो ताकीद नहीं रहती जो मुकीम के लिए है, लेकिन नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अगरचे वो मुअक्कद इनके हक में ना भी रहे वो ताकीद नहीं रहेगी, लेकिन अदा करना चाहिए कि वहाँ की नेकियां जो है वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के नेकियों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा हैं।
ठीक है।
और वहाँ कोई मुसाफिर अगर होता भी है हरमैन शरीफ़ में, जिसको मक्का शरीफ या मदीना शरीफ में 15 दिन नहीं मिलते, वो मुसाफिर है, तो मुसाफिर हमारे यहाँ के हालत के मुताबिक मुकाबले में पुरअमन होता है।
जी जी।
उसको कोई जल्दबाजी नहीं होती,
क्यों गया ही इबादत,
गया ही इबादत के लिए, तो वहाँ सुन्नतों को छोड़ना ये समझ में नहीं आता।
ठीक
है। तो सुन्नतें अदा करें, बल्कि वहाँ तो सुन्नतों पे ज्यादा अमल करें। क्या कह दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप कुर्ब में होंगे तो सुन्नतों का जज्बा लेके वहाँ से पढ़ें।
ठीक। अच्छा, तो अब जैसे वो अमन में है, उसके पास वक्त ही वक्त है और गया ही इबादत के लिए, तो वो कसर भी ना करे, 4 पढ़ ले, अगर उससे कोई ये मतलब निकाले
नहीं,
तो
ये एक अलग मसला है। अच्छा। और वो तो बकायदा वाजिब है, चाहे अमन की हालत हो या बद अमनी वाली सूरत हो, यानी कैफियत में ऐसा है कि जल्दी पहुंचना है मंजिल तक, तो मुसाफिर जब वो मुसाफिर है यानी 15 दिन से कम, अगर वो किसी अपने शहर से इतनी दूर के जो 92 किलोमीटर के फासले पर है और 15 दिन से कम रहने के इरादे से वहाँ गया है, तो वो मुसाफिर है, उसको नमाजों में कसर वाजिब है। अगर कोई पूरी पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा।
ठीक है।
ये कसर करेगा, 2 पढ़ेगा, इसको सवाब वही पूरा जो जोहर का या असर का या ईशा का आम लोगों को मिलता है, इसको भी उतना ही सवाब मिलेगा।
ठीक है। जज़ाकअल्लाह। मीठे मीठे इस्लाम भाई, और सिलसिला दारुल इफ्ताह सुन्नत आपने मुलाजा किया, सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन। صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم
گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لے